ऐश्वर्य आतिथ्य।
श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अहमद अब्बास और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम रमज़ान के पवित्र महीने और रोज़े से विशेष है। आज के इस कार्यक्रम में हम रोज़ा रखना ज़रूरी होने और उसके लाभों पर चर्चा करेंगे।
कुरान मजीद की एक आयत में कहा गया है कि यह रमज़ान का महीना है कि जिसमें लोगों का मार्गदर्शन करने वाला और सत्य व असत्य के मध्य अंतर प्रकट करने वाला कुरान उतारा गया। ईश्वर ने कुरान मजीद में इस आयत द्वारा रमज़ान के महीने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख किया है। इस पवित्र महीने में कुरान उतरा और इस पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, जिसका तरीका यह होता है कि भोर होने से पूर्व खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर पूरे दिन हर प्रकार की खाने पीने की वस्तु से दूर रहते हैं।
रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बारे में कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 183 और 184 में कहा गया है कि हे ईमान लाने वालों, रोज़ा तुम पर अनिवार्य किया गया है जैसा कि तुमसे पहले वालों के लिए अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम पापों से बचने वाले हो जाओ।
कुरान मजीद में इसके बाद की आयत में यह बताया गया है कि यदि तुम में से कोई रोगी हो या फिर यात्रा में हो तो उस पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है। किंतु इन दोनों आयतों में खास चीज़ रोज़ा रखने का आदेश देने की ईश्वर की शैली है, जो वास्तव में सुंदर शब्दों से भरी है। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि रोज़ा रखने का आदेश केवल पैगंबर इस्लाम के अनुयायियों के लिए नहीं है, बल्कि उससे पहले भी लोगों पर वाजिब व अनिवार्य था।
रोज़ा इस्लामी नियमों के अनुसार हर बालिग के लिए अनिवार्य होता है, किंतु इस आदेश में लचक भी बहुत है और इसका उल्लेख खुद कुरान में किया गया है और बताया गया है कि यदि कोई बीमार हो और दिन भर भूखा और प्यासा रहना उसके लिए ठीक न हो तो वो रोज़ा न रखे, या इसी प्रकार यदि वो यात्रा में है तो भी रोज़ा न रखे और फिर जब समस्या दूर हो जाए तब रखे।
इसके बाद आयत में रोज़ा रखने के प्रभाव व परिणाम का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इस प्रकार से तुम लोग पापों से दूर हो जाओगे, और यदि देखा जाए तो इससे बड़ा इनाम एक धार्मिक व्यक्ति के लिए कुछ और नहीं हो सकता कि वह पापों से दूर हो जाए, क्योंकि पाप मनुष्य के विनाश का कारण बनता है।
रमज़ान का महीना अपना हिसाब करने का भी समय होता है। इस महीने में मनुष्य अपने कामों पर विचार कर सकता है, स्वयं से ये सवाल पूछ सकता है कि गत एक वर्ष के दौरान उसने क्या पाया क्या खोया है और इस सृष्टि के रचयिता से उसके संबंध कैसे रहे। रमज़ान के महीने में जो विशेष कार्यक्रम हैं और जो विशेष संस्कार हैं, वो पूरे महीने में मनुष्य को बार बार ये अवसर प्रदान करते हैं कि वो स्वयं को ईश्वर के समक्ष उपस्थित होने के योग्य बनाए।
वास्तव में आनंद का आभास मनुष्य के लिए ईश्वर की एक कृपा है, किंतु इस सुख के आभास की शैली अलग अलग लोगों में भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ लोगों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है तो कुछ लोगों को वैज्ञानिक चर्चा करके मज़ा आता है, और कुछ लोगों को दूसरों पर अत्याचार करके आनंद का आभास होता है, जो वास्तव में रोगी होते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक आनंद मनुष्य का वास्तविक परम आनंद है, किंतु आध्यात्मिक आनंद का उसी समय आभास होता है जब मनुष्य अपने भीतर सद्गुणों को विकसित करे और बुराइयों से बचे और अन्य लोगों पर अत्याचार न करे। यही नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति को शक्तिशाली बनाए, यहाँ तक कि उसके भीतर किसी भी प्रकार की प्रतिशोध की भावना किसी भी दशा में पनप ना जाए, और शक्ति व सामर्थ्य होने के बावजूद बदला लेने के बजाय उसे क्षमा करने में अधिक आनंद आए। जब ऐसा होने लगे तो आप समझ जाएं कि आप आध्यात्मिक आनंद के चरण में प्रविष्ट हो गए हैं।
रमज़ान का महीना आध्यात्मिक आनंद के लिए स्वयं को तैयार करने और स्वयं को उसका पात्र बनाने का बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि रोज़ा और दिन भर कड़ी गर्मी में भूख व प्यास मनुष्य के मन के बहुत से गलत विचारों को खत्म कर देती है। इसके साथ ही रमज़ान के महीने में मनुष्य के भीतर स्वयं ही एक प्रकार का अध्यात्म उत्पन्न हो जाता है, और चूंकि इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत पर बहुत अधिक बल दिया गया है, इसलिए रोज़ा रखने वाले लगभग सारे लोग कुरान ज़रूर पढ़ते हैं, जो स्वयं आध्यात्मिक भाव को गहरा कर देता है।
कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको इस्लाम स्वीकार करने वाले एक अमरीकी नागरिक के रोज़े के संदर्भ में अनुभव सुनाते हैं। सैन फ्रांसिस्को के नव मुस्लिम अहमद कहते हैं, मैं मुसलमान बनने से पहले फ्लोरिडा में एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के बाद मैं विभिन्न किताबों का अध्ययन करता था। एक बार एक किताब में मैंने इस्लाम और रोज़े के बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि मुसलमान के लिए रोज़ा रखना अनिवार्य है। रोज़ा अर्थात भूख प्यास सहन करना, सहनशीलता को बढ़ाना, यह समझना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। इस्लाम स्वीकार करने के बाद जब मैंने पहली बार रोज़ा रखा तो मेरी आयु 19 वर्ष थी। उस दिन मैंने बड़े गर्व से अपने रूममेट को बताया कि मैं रमज़ान का रोज़ा रखने वाला हूँ। यह वह पहला काम था जो मैं अपने माता पिता को खुश करने के लिए या नंबर लेने के लिए नहीं कर रहा था। मैं उसके लिए भूख व प्यास सह रहा था जिसे मैंने देखा तक नहीं था, किंतु अपने पूरे अस्तित्व के साथ उसकी उपस्थिति को महसूस करता था। वह दिन सबसे अच्छा और शायद मेरी आयु का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। मेरे गैर मुस्लिम मित्र यह समझते थे कि रोज़ा रखने वाले के हाथ दिन खत्म होने के बाद केवल भूख व प्यास ही लगती है, किंतु जब मैंने उन्हें मन की शांति व आध्यात्मिक आनंद के बारे में बताया तो उनकी समझ में आया कि मेरे भीतर कितना परिवर्तन हो चुका है। वास्तव में रोज़ा रखकर मुझे ऐसा आनंद आया जो संभवतः किसी अन्य काम से मुझे कभी नहीं प्राप्त हो सकता था।
रमज़ान का पवित्र महीना स्वयं को बनाने और संवारने का समय होता है। इस महीने की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण उपासना रोज़ा रखना है, और रोज़े की जो विशेषताएं हैं वो किसी अन्य उपासना में नहीं हैं। ये उपासना इतनी विशेष है कि ईश्वर का कथन है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका इनाम मैं खुद दूंगा। संभवतः रोज़े के इतने महत्व का एक कारण ये है कि ये ऐसी उपासना है जो अन्य उपासनाओं के विपरीत स्वयं मनुष्य के मन व आत्मा से संबंध रखती है। अर्थात ये उपासना नज़र नहीं आती, बल्कि केवल रोज़ा रखने वाला ही इसे जानता और महसूस करता है। उदाहरण स्वरूप, जब एक मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो सजदा करता है और रुकू और क़याम करता है तो लोग समझ जाते हैं कि वो नमाज पढ़ रहा है, या दान दक्षिणा देता है तो भी वो कम से कम लेने वाले के लिए स्पष्ट उपासना होती है। किंतु रोज़ा ऐसा नहीं होता, और रोज़ा रखने वाला खामोशी से खान पान छोड़ देता है और अपने सामान्य काम करता रहता है, और यदि वो स्वयं न बताए तो किसी को उसकी इस उपासना के बारे में पता नहीं चल सकता, और इसकी वजह से उसमें दिखावे आदि की गुंजाइश न होने के बराबर होती है। रोज़ा रखने वाले की इस उपासना का ज्ञान ईश्वर को होता है, और इसीलिए कहा गया है कि रोज़ा ईश्वर के लिए रखा जाता है और वही इसका इनाम देगा।
रोज़े की एक विशेषता, जैसा कि हमने बताया, आध्यात्मिकता में विस्तार है, क्योंकि इच्छाएं शैतान का हथियार है और शैतान खाने पीने और विभिन्न प्रकार के सुखों को साधन बनाकर मनुष्य को बहकाता है और उन्हें पाप करने पर प्रोत्साहित करता है। और यह एक वास्तविकता है कि मन की इच्छाएं खान पान से प्रबल होती है। यही कारण है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि शैतान खून की भांति मनुष्य की रगों में दौड़ता है, इसलिए रोज़ा रखकर उसका रास्ता बंद करो।
वैसे उपासना की भावना भी बहुत महत्व रखती है। इस्लाम धर्म में कोई भी उपासना दिखावे के लिए स्वीकार्य नहीं है, और उपासना के समय ईश्वर को प्रसन्न करने के अलावा कोई भी भावना धार्मिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। और ईश्वर को प्रसन्न करने के अलावा किसी अन्य भावना के साथ की जाने वाली उपासना का कोई मूल्य नहीं है। किंतु ईश्वर के लिए की जाने वाली उपासना के पीछे निहित भावनाएं भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ लोग ईश्वर की शुद्ध उपासना नरक और उसकी आग के भय से करते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी उपासना स्वर्ग के लालच में करते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों भावनाओं से दूर हटकर ईश्वर की सिर्फ इसलिए उपासना करते हैं क्योंकि वो उसे उपासना के योग्य समझते हैं। इस संदर्भ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तेरी उपासना तेरे नर्क के भय या तेरे स्वर्ग के लोभ में नहीं करता, बल्कि मैंने तुझे उपासना के योग्य पाया, इसलिए तेरी उपासना करता हूँ।
يا قومي لقبول